पहला सवाल, आप में से जो फर्स्ट टाइम आए हैं यहां पर हाथ खड़ा करें। एक दो दस पंद्रह है बस, बाकी लोग दूसरी बार तीसरी बार ऐसे हैं। मतलब जो दूसरी बार तीसरी बार आ रहे हैं रेगुलर स्टूडेंट्स हैं आप लोग जी, तो कमाल है आपकी। रेगुलर स्टूडेंट होते हुए हर बार हुएम आए सीखने आ जाते हैं आप लोग हाँ, तो सिर्फ 10-15 लोग जो फर्स्ट टाइम आए हैं, जरा ये भी बता दो कि आप फर्स्ट टाइम ब्रह्मा कुमारीज में हेडक्वार्टर में आए हैं या कोलाबा में जाते रहे हैं या किसी सेंटर में पहले जाते रहे हैं। जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम ब्रह्मा कुमारी इसका कोर्स आदि कुछ नहीं किया है किसी सेंटर पर जाके, वो हाथ उठाएं। 10-12 बस, बाकी सबने तो कोर्स किया हुआ है, मुरली भी सुनते हैं, लेकिन फिर उमंग रहता है कि हम सुने कि हम कौन हैं है ना। शायद इसीलिए गायत्री बहन को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, मिक्स ग्रुप लाना पड़ता है। और कल आपने देखा होगा ना कितना बड़ा क्लास भरा था, क्योंकि जनरली होता क्या है, जो अदर ग्रुप्स आते हैं वो रेगुलर स्टूडेंट के ग्रुप होते हैं, तो उनके इसमें ये सब क्लासेस नहीं चलती है, मैं कौन हूँ कौन परमात्मा है। लेकिन चूंकि आपका मिक्स ग्रुप होता है और उसमें मिक्स ग्रुप में भी पुराने भी चाहते कि हम फिर से वो सुने हाँ? वरना अगर आज बिल्कुल नए के हिसाब से देखा जाए तो अभी वाली क्लास सिर्फ 15 लोगों की है, सिर्फ सिर्फ 15 लोगों की ये क्लास है, बाकी सब तो पुराने हैं, सुना हुआ है ना। और इसीलिए थोड़ा सा ऐसा कभी कभी हो जाता है कि अलग ग्रुप में आते हैं, फिर डबल मिक्स होता है, तो आगे देखते हैं कैसा फ्यूचर होता है इस ग्रुप का। तो चलिए वो तो ठीक हो गया, तो हमें भी आइडिया हो गई कि सिर्फ 10-15 लोग जो है जिनको रियली रियली समझना है कि मैं कौन हूँ, बाकी तो समझे हुए हैं लेकिन उस समझ को और डीप लेकर जाना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से साइलेंस में बैठकर इस सेशन की शुरुआत करते हैं। ओम शांति। तो ब्रह्मा कुमारीज में राजयोगा मेडिटेशन सिखाया जाता है, जिस राजयोगा मेडिटेशन के 3 कदम हैं, उसमें से पहला कदम है कि जिसने ये राजयोग मेडिटेशन सीखना है, जिसने ये राजयोग मेडिटेशन करना है, वो है कौन, उसको पहले समझ ले। या जिसको दूसरे शब्दों में कहें, Who am I? मैं कौन हूं, इस पहली को हमें पहले हल करना होगा, क्योंकि इस पहली के हल होने से दुनिया में जो सारी समस्याएं हैं उनका भी हल हो जाता है। आज जो हमारे जीवन में इतनी सारी समस्याएं आती हैं, उसका एकमात्र कारण है कि हम जानते ही नहीं हैं कि हम कौन हैं, और इसलिए जिंदगी समस्याओं से भरी है, जबकि जिंदगी थी सुख शांति प्रेम आनंद का अनुभव करने के लिए। और इसीलिए जब मानव इन समस्याओं से घिरा हुआ है, सुख शांति प्रेम आनंद से कोसों दूर है, तो हमारे सदियों से हमारे संतों ने, हमारे महात्माओं ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने एक ही बात कही, और वो एक बात कौन सी, हे मानव, तुझे जीवन में अगर सच्चा सुख, सच्ची शांति, सच्चा प्यार अनुभव करना है तो तू अपने भीतर झांक, तू अपने आप को पहले पहचान कि चाहने वाला कौन है, कौन है जो परेशान है और कौन है जो शान में लौटना चाहता है। क्योंकि परेशान का अपोजिट शान, माना हम अपनी असली शान जो है सुख और शांति और प्रेम आनंद में रहने की, उस शान से परे होना मतलब दुख अशांति में आना, उसी का नाम तो परेशान है और क्या है, है ना। तो हम अपनी शान खो गए हैं क्योंकि अपने आप को जानते ही नहीं है, और इसीलिए आज हम उस पहली को हल करेंगे कि मैं कौन हूं, Who am I? अगर आपसे ये सवाल किया जाए तो आप क्या जवाब देंगे, Who am I या Who are you आपको पूछा जाए, आपका जवाब क्या होगा, बोलो। मैं आत्मा हूं, वो जिन्होंने ज्ञान समझा है। दुनिया में अगर आपसे कोई पूछे तो आपका उत्तर क्या होगा, हाँ, अपना नाम बताएंगे और पोजीशन बताएंगे और क्या करेंगे, हाँ जी, वही अपने बारे में क्या क्या बताएंगे, वही तो पूछा जा रहा है। ठिकाना बताएंगे, जाति बताएंगे, धर्म बताएंगे, और इन जनरल जब कोई पूछता है तो जैसे का ठिकाना, नाम, लोकेशन, पोजीशन, क्वालिफिकेशन, एड्रेस, और अगर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में है तो नेशनैलिटी, और अगर इंटर रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में है तो धर्म, और अगर रिटायर्ड है तो एक्स लगा के बताएंगे, है ना, एक्स लगा देंगे और बोलेंगे एक्स चेयरपर्सन ऑफ सो एंड सो कंपनी, एक्स मैनेजर ऑफ सो एंड सो कंपनी। तो ये जो भी है जो हम उत्तर में देते हैं, क्या मैं सचमुच ये हूं? क्योंकि अगर हम अपने जीवन को देखें, जब एक शिशु के रूप में जन्म लिया था, क्या नाम लिखकर लाए थे? लाए थे नाम लिखकर, मतलब नाम हमें जन्म के बाद मिला है, हम खुद लाए नहीं है साथ में, हमें मिला है। इसी तरीके से शादी होती है फिर नाम बदलता है, लेकिन व्यक्ति तो वही का वही है, व्यक्ति तो वही का वही है, तो दूसरा नाम मिला फिर। या पढ़ाई पढ़ते हैं तो एक के बाद एक डिग्रियां मिलती है, 21 साल के पहले तो डिग्री नहीं मिलती है। तो जब डिग्री नहीं थी और तब किसी ने पूछा था आप कौन हैं, तो कहा था मैं इस विद्यार्थी हूं, और जिस दिन डिग्री मिल गई उस दिन क्या बोला, हाँ मैं बीए हूं, मैं एमए हूं, इस तरीके से। मतलब ये सब मिलते जा रहा है हमें, है ना। फिर पोजीशन जॉब में लग गए, पोजीशन मिली तो फिर कहा कि मैं ये हूं और मैं वो हूं। तो जब हम किसी से पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं, मैं कौन हूं, तो उत्तर में क्या आ रहा है? जो हमें मिला है, जो हमने हासिल किया है, इसका मतलब मैं कौन हूं, इसका उत्तर तो अभी तक आया ही नहीं है, उसका तो उत्तर आया ही नहीं अभी तक। हमने क्या पूछा, आप कौन हैं, और आप बता क्या रहे हैं कि मैंने ये हासिल किया है, तो हमारा उत्तर तो अभी भी नहीं आया ना, प्रश्न का उत्तर तो आया ही नहीं ना। इसी तरीके से अगर आपको कहा जाए मैं कौन हूं, इसका चित्र बनाइए, अभी तक तो आपने नाम आदि के रूप में अपना आंसर दिया। अगर आपसे पूछा जाए मैं कौन हूं, जो आप समझते हैं जो भी मैं हूं, उसका चित्र बनाइए, तो चित्र के रूप में आपकी आंखों के सामने उस विजुअलाइजेशन में क्या चित्र आता है? मोस्टली दर्पण के सामने जब खड़े होते हैं तो इसका चित्र वहां आता है, तो जब भी हम मैं बोलते हैं तो तब भी वो ही चित्र आता है, है ना, दर्पण के सामने उसको देख के हम मैं बोलते हैं। लेकिन शरीर के एक एक अंग को या शरीर को हम क्या बोलते हैं, मेरा शरीर या मैं शरीर, मेरी आंखें या मैं आंखें, मेरे हाथ या मैं हाथ, मेरे सिर में दर्द हो रहा है या मैं सिर दर्द हो रहा है, हाँ? तो अभी अभी जब चित्र बनाया कि मैं कौन हूं तो शरीर आया और इसको बोला मैं शरीर, और अभी जब पूछा जा रहा है मैं शरीर या मेरा शरीर, तो बोलते नहीं मेरा शरीर। एक बार इसको मैं शरीर भी बोला हमने, और एक बार इसको हम मेरा शरीर भी बोल रहे हैं। अब दोनों में से राइट कौन सा है वो डिसाइड कर लो पहले, राइट वाला कौन सा है? मेरा शरीर अगर राइट है तो फिर मैं कौन, तो फिर मैं कौन हूं? फिर आज दिन तक तो मैंने इसको ही समझा था, तो हमारी गलती दिख रही है, हम क्या कर रहे हैं कि जो जो हमें मिलता गया उसको हमने मैं बोलते गए, और इसलिए मैं का आता पता अभी तक हमें है ही नहीं। मेरे को पोजीशन मिली, वो थी मेरी पोजीशन, मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली, वो थी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेरे को रिलेशन मिले, वो थे मेरे रिलेशन, लेकिन बोला मैं रिलेशन, कैसे, कहा मैं फादर हूं, मैं फादर हूं, वो तो रिलेशन है ना। फादर बनने से पहले भी आप थे या नहीं थे? हमने कहा मैं इंजीनियर हूं, वो तो मेरा प्रोफेशन है ना, उस प्रोफेशन से पहले भी आप थे या नहीं थे? तो अंतर दिखता है, एक है मैं इंजीनियर हूं और एक है इंजीनियरिंग मेरा प्रोफेशन है। दोनों में अंतर? एक है मैं भारत में रहती हूं और एक है मैं भारतीय हूं। है अंतर? एक है मैं हिंदू धर्म के कर्म कांडों को फॉलो करती हूं और एक है मैं हिंदू हूं। है दोनों में अंतर? दोनों में अंतर है, लेकिन हमने एक कर दिया है। हमने क्या कर दिया है? एक कर दिया है। हर एक ने इस दुनिया में आकर बहुत कुछ हासिल किया है, प्रॉपर्टी हासिल की है, पोजीशन हासिल किया है, परिवार हासिल किया है, डिग्रियां हासिल की है, और उस सबको जो जो हासिल करते चले गए, जो जो अक्वायर करते चले गए, उसको हमने बोल दिया मैं। और इसलिए क्या हो रहा है, हर बार हमें कोई चीज मिलती है, अक्वायर करते हैं, मेरा इंट्रोडक्शन फिर बदल जाता है। कहा ना, 21 साल के पहले तक डिग्री नहीं थी, तो मेरे से किसी ने पूछा आप कौन है, तो कहा मैं बीए का छात्र हूं। लेकिन डिग्री मिलने के बाद मेरा परिचय क्या हो गया? मैं बीए हूं। पोजीशन मिलने से पहले कुछ और, पोजीशन मिलने के बाद अब मैं इंजीनियर हूं। तो हुआ क्या, हम जो आज दिन तक परिचय दे रहे वो मैं का परिचय नहीं दे रहे। हम किसका परिचय दिया है? हमने जो हासिल किया है उसका परिचय दे रहे हैं। यहां तक कि बॉडी भी तो हासिल की है ना, बॉडी भी तो हासिल की है ना हमने। क्या कहते हैं, घर में जब बच्चा जन्म लेता है तो सबको रिलेटिव्स को हम न्यूज देते हैं कि घर में बच्चे का जन्म हुआ है। लेकिन जन्म होने से पहले तक की न्यूज क्या रहती है? बच्चा गर्भ में पल रहा है। और उससे भी पहले की न्यूज क्या होती है? गर्भ ठहरा है, बच्चा ठहरा है नहीं बोलते हैं, सीधा बच्चा पलना शुरू नहीं होता है कभी भी, कंसेप्शन होता है तब कहते वो गर्भवती है। तो पहले तो सिर्फ मांस का एक पिंड है अंडे के फॉर्म में, उसका मल्टीप्लिकेशन होते 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 ह्यूमन बेबी फॉर्म तैयार होता है, और तब उसमें जो मैं है वो एंटर करता है, और जब वो बाहर आता है तब कहते बेबी का जन्म हुआ है। तो शरीर भी तो मिला, शरीर भी तो मिला है ना, वो भी तो पहले से मैं को मिला हुआ है ना, शरीर कहीं तैयार हुआ उसमें मैं आया और फिर कहा कि बच्चे का जन्म हुआ, तो शरीर भी मिला। तो इसलिए मैं कौन हूं, इसका सही उत्तर हासिल करने के लिए राजयोग हमें सिखाता है कि जो जो तुमने हासिल किया है, लेबल्स है ना सारे, इन लेबल्स को एक एक करके निकालते जाओ और फिर देखो कि मैं क्या बचता क्या है, वो है मैं। तो हमने अपने परिचय में क्या बोला? नाम। नाम हमें मिला, रख दे साइड में उसको, राइट। डिग्री हमें मिली या लाए थे? मिली, रख दे साइड में। रिलेशन, फादर मदर सिस्टर ब्रदर व्हाटएवर, मिले या लाए थे? साइड में रख दो। बॉडी मिली, साइड में रख दो। क्या बचा अभी? हाँ, कुछ नहीं बचा। बच्चा, क्या बचा? कि जैसे कहा मेरा शरीर, मतलब कोई तो है जो कह रहा है मेरा शरीर, कोई तो है जो कह रहा है आज मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है, कोई तो है। वो जो कोई तो है जो कह रहा है कि ये मेरा है, वो है मैं। और वो जो कह रहा है मैं, वो मैं क्या है, एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, एक एनर्जी है, एक कॉन्शियसनेस है जो इस शरीर को चला रही है। वो मैं तो वो है जो कह रहा है मेरा, लेकिन वो मैं भी क्या है, एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, एक एनर्जी है, एक कॉन्शियसनेस है जो इस बॉडी को चला रही है। आंखें देखती है, लेकिन क्या देखना है और क्या नहीं देखना है वो कौन तय करेगा? आंखें तय करेगी? वो मैं तय करेगी। हाथ काम करते हैं, लेकिन हाथों से किसी को आशीर्वाद देना है या हाथों से किसी को थप्पड़ मारना है, ये हाथ तय करेंगे क्या? कौन तय करेगा? मैं तय करूंगा। पांव चलते हैं, लेकिन गलत राह पे चलना है या सही राह पे चलना, ये कौन तय करेगा? कान सुनते हैं, लेकिन निंदा सुननी है किसी की या स्तुति सुनना है, वो कौन तय करेगा? मुख खाता है, लेकिन नॉनवेज खाना है या वेज खाना है, ये कौन तय करेगा? हाँ, मैं। तो मैं कौन हूँ? मैं वो शक्ति हूँ जो इस शरीर को चलाती हूँ। मैं वो शक्ति हूँ जो सोचती है। मैं वो शक्ति हूँ जो तय करती है, डिसीजन लेती है, फैसला लेती है। और मैं वो शक्ति हूँ कि डिसीजन जो लेती हूँ उसको फिर कर्म में लेकर आती हूँ। मैं हूँ वो। कौन हूँ मैं? मैं एक ऊर्जा, एक शक्ति, एक एनर्जी, एक कॉन्शियसनेस जो शरीर को चलाती है, जो सोचती है, जो डिसाइड करती है और फिर जो कर्म में आती है। और इसी को अध्यात्म में नाम दिया गया सोल, आत्मा, रूह, सेल्फ। सोल कैसे लिखते हैं इंग्लिश में? एस ओ यू एल, सोर्स ऑफ यूनिक लाइट एनर्जी। सेल्फ कैसे लिखते हैं इंग्लिश में? एस ई एल एफ, स्पिरिचुअल एनर्जी इन लाइट फॉर्म। थ्रू आउट द डे हम लोग बातें करते हैं आपस में, इंसान को आत्मविश्वास के साथ जीना चाहिए, इंसान को सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट का हिंदी ट्रांसलेशन करो, सेल्फ रिस्पेक्ट का हिंदी ट्रांसलेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस का हिंदी ट्रांसलेशन। तो आप सेल्फ के लिए कौन सा शब्द ले रहे हैं हिंदी में? आत्मा। लेकिन अगर आत्मा का ही पता नहीं हो तो सही अर्थों में सेल्फ रिस्पेक्ट जीवन में आ सकता है? आत्मा का ही पता नहीं हो तो सही अर्थों में जीवन में आत्मविश्वास आ सकता है? नहीं आ सकता। और यही कारण है उस सेल्फ को समझना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल प्रॉब्लम्स तो यही आ रही है। बहन जी, रिस्पेक्ट ही नहीं रहा जीवन में आजकल। सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो दूसरा क्या रिस्पेक्ट देगा? सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो दूसरा क्या ट्रस्ट करेगा? प्रॉब्लम तो यही आ रही है परिवारों में, कि परिवार में जहां कहते हैं कि संबंधों की नींव किस पर खड़ी होती है, प्यार, सम्मान, विश्वास, लव, रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट, दीज आर द फंडामेंटल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द गुड रिलेशनशिप। और हम कहते आज वो रह नहीं गया है। क्यों नहीं रह गया है? क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। क्यों नहीं है सेल्फ रिस्पेक्ट? सेल्फ का ही पता नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है। क्यों नहीं है? सेल्फ का पता ही नहीं है। तो कहाँ से आएगा सेल्फ रिस्पेक्ट, कहाँ से परिवारों में वो एक दूसरे के प्रति प्यार रह जाएगा। धीरे धीरे इसीलिए तो खत्म हो गया। और इसीलिए उस सेल्फ को, उस सोल को समझना बहुत बहुत जरूरी। जब रियल अर्थों में सेल्फ को समझूंगी, तब रियल अर्थों में मैं सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीऊंगी, रियल अर्थों में मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जीऊंगी। और ये रियल सेल्फ रिस्पेक्ट, रियल सेल्फ कॉन्फिडेंस ही फिर रिलेशंस में वो रिस्पेक्ट और ट्रस्ट और प्यार लेकर आएगा और जीवन ठीक हो जाएगी। तो कौन हूं मैं? जो सोचती है, जो डिसाइड करती है, जो कर्म में आती है। अच्छा, अब ये जो मैं है, जिसको आत्मा कहा, जिसको रूह कहा, जिसको सेल्फ कहा, तो दो क्लियर बातें चली, एक बॉडी और इस बॉडी को चलाने वाली शक्ति जिसको नाम मिला आत्मा, रूह, सोल, सेल्फ। अब ये दो सत्ताएं जो है, इनमें से मृत्यु किसकी होती है? मैं की या शरीर की, आत्मा की या बॉडी की? हाँ, शरीर की मृत्यु होती है। मैं की मृत्यु होती है? नहीं होती। किसकी होती है? बॉडी की। इसीलिए सर्जरी कराने जाओ, डॉक्टर कहेगा सिस्टर टेक द मिस्टर सो एंड सो इन, और अगर सर्जरी में कुछ गड़बड़ हो गई, फेल्यूर हुआ, क्या कहेगा डॉक्टर? सिस्टर टेक द बॉडी आउट। आफ्टर डेथ मिस्टर सो एंड सो नहीं है, लेकिन बिफोर डेथ मिस्टर सो एंड सो, आफ्टर डेथ क्या है? बॉडी है। तो अंदर जा रहा है पेशेंट और बाहर आ रही है बॉडी। थिएटर में, ऑपरेशन थिएटर में जा रहा कौन है? पेशेंट। बॉडी नहीं जा रही है, कौन जा रहा है? पेशेंट। लेकिन जब आ रही है गड़बड़ होके, तो पेशेंट नहीं आ रहा, क्या आ रहा है? बॉडी आ रही। क्यों ऐसा हो गया अंतर? क्यों अंतर आ गया? हाँ, जो मैं था, जो उस बॉडी को चला रहा था, वो चला गया, तो सिर्फ रह गई बॉडी, और जिसको हिंदी में बहुत अच्छी से कहते हैं अरथी, अ प्लस रथी। रथी माना शरीर एक रथ है, और इस रथ पे जो सवार है, रथ को चलाने वाला वो मैं, वो है रथी। तो ये रथ रथी के साथ है तो जीवन है, लेकिन ये रथ रथी के बिना है तो अरथी, और अरथी को कहां लेके जाएंगे? शमशान में लेकर जाएंगे, जहां उसका दाह संस्कार किया जाएगा। और इसलिए आपने देखा होगा, जब महान हस्तियों के दाह संस्कार के भी एक प्रोग्राम्स होते हैं, है ना, सभी उसमें शामिल होने जाते हैं, तो जिस समय अग्नि संस्कार हो रहा होता है, कमेंटेटर कमेंट्री कर रहा होता है, आखिरकार पंच तत्वों से बना शरीर पंच तत्वों में विलीन होने जा रहा है, और आत्मा तो कब से अगली यात्रा पर निकल पड़ी है। कहते हैं ऐसे कमेंट्री, करते हैं नहीं करते हैं? तो शरीर और आत्मा, इन दोनों में मृत्यु किसकी होती है? शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती है। और इसीलिए आत्मा के लिए गायन है, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। अजर माना जैसे शरीर बाल अवस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था इससे गुजरता है, उस प्रकार से उसको बुढ़ापा नहीं आता है आत्मा को, अजर है वो। अमर है माना जैसे शरीर मृत्यु को पाता है, जैसे इसको मारा जा सकता है, जिन पांच तत्वों से बना है वो पांच तत्वों से इसको मार के खत्म भी किया जा सकता है, लेकिन चूंकि आत्मा पांच तत्वों की नहीं है, इसलिए कहा जाता है आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, पानी इसको भिगो नहीं सकता, अग्नि इसको जला नहीं सकती, वायु इसको उड़ा नहीं सकती, और स्पेस इसको कहीं छुपा के रख नहीं सकता। यही पांच तत्व है, लेकिन वही पांच तत्व इस शरीर के साथ हानि पहुंचा सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? तो फर्क पता चल रहा है दोनों में अंतर क्या है। तो इसीलिए कहा जाता है ह्यूमन बीइंग। हम क्या कहलाते हैं? ह्यूमन बीइंग कहलाते हैं, बीइंग प्लस ह्यूमन। तो ह्यूमन माना ह्यूमन बॉडी, ह्यूमस, ह्यूमन माना ह्यूमस, ह्यूमस माना मट्टी। कहते ना माटी का पुतला एक दिन माटी में मिल जाएगा, मिट्टी से बना मिट्टी में खत्म हो जाएगा। ये किसके लिए गायन है? इस शरीर के लिए गायन है। और बीइंग माना जो इस शरीर को चला रही है, ह्यूमन बीइंग। तो हु एम आई एम दैट बीइंग विच डजंट डाई। हु डजंट डाई, किसकी मृत्यु होती है? शरीर की होती है, मैं आय की मृत्यु नहीं होती है। तो फिर आय के साथ क्या होता है? फिर इसकी तो मृत्यु हो गई, मैं के साथ क्या होता है? फिर हमने तो बोल दिया कि आत्मा आगे की यात्रा पर निकल पड़ी। आगे की यात्रा पर निकल पड़ी का मतलब क्या है? ये आत्मा जिसने ये शरीर रूपी वस्त्र यहाँ पर छोड़कर चली गई है, अब जाकर कहीं दूसरा शरीर धारण करेगी। उसको जिसको पहले ही कहा कि गर्भ तैयार हो रहा था, ह्यूमन बॉडी तैयार हो रही थी, और जब वो ह्यूमन शेप में वो बॉडी आ गई, ये आत्मा ने वहां जाके प्रवेश किया, और वो प्रवेश करके और बॉडी का डेवलपमेंट होगा और उसके साथ बाहर आएगी और फिर जीवन जिएगी। तो मतलब क्या हुआ कि कल आप एक ड्रेस पहन के आए थे, आज दूसरी ड्रेस पहन के आए, लेकिन व्यक्ति तो वही वाले आप है। हाँ, व्यक्ति तो वही। ऐसे ही शरीर रूपी वस्त्र एक छोड़ के आत्मा दूसरा शरीर रूपी वस्त्र धारण कर दिया। यूं कहे कि सीडी प्लेयर है और एक सीडी है, सीडी में बहुत सारे गाने हैं, सीडी प्लेयर में डाला तो गाने बजने लगे। अब मैं ये सीडी उठा के कहीं और गई, फिर वहां पे दूसरे सीडी प्लेयर में डाला तो गाने वही वाले बजेंगे या दूसरे वाले बजेंगे? वही वाले बजेंगे। तो वही आत्मा तो वही रहती है, इसीलिए कहते हैं जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, सब मिलते हैं यहीं पर कपड़े बदल बदल के। ड्रेस और एड्रेस वो मैं वो आत्मा चेंज करती है, जबकि ये ड्रेस जो शरीर है वो मृत्यु को प्राप्त होता है, और इस शरीर को धारण करने वाली जो शक्ति आत्मा है वो अपना नया शरीर नया ड्रेस पहनती है और नई लोकेशन में नई एड्रेस पे चली जाती है, और उस नई लोकेशन पे उसको फिर नए रिलेटिव्स मिलते हैं, नई लोकेलिटी मिलती है, और वहां पे रह के बहुत कुछ आत्मा फिर से अक्वायर करती है, हासिल करती जाती है। तो ये आत्मा जो है जो चेंज करती है कॉस्ट्यूम को, कॉस्ट्यूम चेंज करने से पहले इस बॉडी में करती क्या है बैठ के? भाई वो तो जब इसको छोड़ेगी तो कहां दूसरी जगह जाएगी, लेकिन जब तक इसके अंदर है तब तक वो आत्मा इसके अंदर बैठ के करती क्या है? तो कहा वो जो मैं है, वो जो बीइंग है, वो जो एनर्जी है, वो जो सोल है, वो इस बॉडी में बैठकर थ्री रोल्स प्ले करती है, तीन रोल्स प्ले करती है। कौन से है वो तीन रोल्स? तो जिसको हमने नाम दिया मन बुद्धि संस्कार। उससे पहले इस बात को पहले समझ ले कि कई लोगों को प्रश्न होता है कि बहन जी हमने आंखों से आत्मा देखी नहीं है, न किसी ने हमें दिखाया है, न विज्ञान ने इसको प्रूव किया है, हाउ डू वी बिलीव दैट सोल एग्जिस्ट? हम कैसे विश्वास करें, इस बात पर कैसे यकीन करें कि आत्मा होती है? इसका उत्तर लेने के लिए हमें एक प्रश्न करना पड़ेगा आपसे, और वो प्रश्न ये है क्या आप बिलीव करते हैं कि आपके पास मन है? बिलीव करते हैं? क्या आपने देखा है मन को? आपने देखा है मन को? नहीं देखा है। आपने देखा नहीं है, विज्ञान ने उसको प्रूव नहीं किया है, और न ही किसी डॉक्टर ने आपको दिखाया है। डॉक्टर कभी सर्जरी करे ना तो वो आपको दिखा सकता है, ये देखो ये ब्रेन है, ये हाइपोथैलेमस है, ये है ये, लेकिन आप उसके बीच में पूछो डॉक्टर साहब इधर माइंड किधर है, दिखाएगा आपको? क्यों नहीं दिखा रहा? ये ब्रेन कैसे दिखा रहा है, माइंड क्यों नहीं दिखा रहा है? ब्रेन इसलिए दिखा पा रहा है बिकॉज ब्रेन इज समथिंग विच इज फिजिकल एंड फिजिकल थिंग्स कैन बी सीन थ्रू द फिजिकल आईज, बट माइंड इज नॉट फिजिकल और इसलिए उसको देखा नहीं जा सकता है। तो एवरीथिंग विच इज फिजिकल कैन बी सीन, कैन बी शोन, कैन बी प्रूव्ड, प्रूव किया जा सकता है, बट समथिंग विच इज नॉट फिजिकल कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी शोन, कैन नॉट बी प्रूव्ड, बट येट वी बिलीव दैट यस माइंड एग्जिस्ट, वी हैव माइंड। क्यों? क्या प्रूफ है आपके पास? मेरा अनुभव ही मेरा सबसे बड़ा प्रूफ है कि माइंड है, क्योंकि मैं फील करती हूं सारा दिन, मैं इस बात को अनुभव करती हूं कि मैं सोच रही हूं, तो अनुभव की अथॉरिटी के सामने सब कुछ फेल हो जाता है, सब कुछ फेल हो जाता है। मेरा अनुभव कह रहा है ना, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। तो माइंड है, तो वो माइंड क्या है फिर? तो आई द बीइंग व्हेन आई थिंक इट इज कॉल्ड माइंड, आई द बीइंग व्हेन आई थिंक इट इज कॉल्ड माइंड। मैं बीइंग, मैं आत्मा जब सोचती हूं उस सोचने को का जो काम करती हूं उसको नाम मिल जाता है मन। आई द बीइंग व्हेन आई क्रिएट अ थॉट, व्हेन आई क्रिएट अ थॉट, इवेल्युएट द थॉट्स एंड देन टेक अ डिसीजन, इट इज कॉल्ड इंटेलेक्ट। मैं आत्मा जब विचार करती हूं, विचारों का विश्लेषण करती हूं और फिर एक निर्णय लेती हूं, उसको क्या कहते हैं? इंटेलेक्ट। मतलब कौन ले रहा है डिसीजन? आई द बीइंग। सोच रहा कौन है? आई द बीइंग। सोच कौन रहा है? आई द बीइंग। लेकिन जब सोच रहे हैं उस समय आई द बीइंग को मन बोल दिया। डिसीजन कौन ले रहा है? डिसाइड कौन कर रहा है? आई द बीइंग। लेकिन जब बीइंग सोच डिसाइड करने का काम करे उस समय उसको नाम दे दिया इंटेलेक्ट। अब तीसरी फैकल्टी है संस्कार। कहा ना कि वो बीइंग इस शरीर में बैठकर करती क्या है? तो एक तो माइंड का रोल प्ले करती है, दूसरा इंटेलेक्ट का रोल प्ले करती है, तीसरा संस्कार। क्या है संस्कार, उसको समझते हैं। सपोज किसी ने, सिगरेट स्मोकर है कोई, और मुझे फॉर द फर्स्ट टाइम ही ऑफर्ड मी अ सिगरेट टू स्मोक, मुझे सिगरेट स्मोक करने के लिए ऑफर किया। फर्स्ट टाइम, मैंने कभी इसके पहले सिगरेट स्मोक नहीं किया है। तो जब फर्स्ट टाइम जो चीज मैंने जिंदगी में कभी नहीं की है और उस चीज का ऑफर अगर मेरे सामने फर्स्ट टाइम आया तो क्या होगा? Once the offer comes in front of me, my mind start thinking कि पीऊं या नहीं पीऊं। ये दो thoughts आएंगे, ये दो thoughts आएंगे, mind क्या करेगा? Work करना शुरू करेगा। और mind work करना शुरू करेगा मतलब मैं work कर रही हूं, मैं I the being, समझ में आ रही है ना बात? I the being start working over it कि पीऊ या नहीं पीऊ, पीऊ या नहीं। तो अंदर डिबेट चल रही है। डिबेट मतलब ही क्या है? एक ही बात लेकिन एक पक्ष में एक दूसरा विपक्ष में, उसको ही डिबेट बोलते हैं। तो बात तो ऑफर तो सिर्फ एक ही है कि ये सिगरेट है आप पियो, लेकिन अंदर में डिबेट चल रही है। एक मन कह रहा है पीऊ, दूसरा मन कह रहा है मत पियो। अब इस डिबेट में, डिबेट ऐसे ही नहीं होती है, डिबेट में जब भी डिबेट होती है तो न्याय करने वाली टीम भी बैठी होती है। डिबेट मतलब ही एक न्याय की टीम चाहिए कि ये डिबेट में एक पक्ष में बोलेगा एक विपक्ष में बोलेगा फिर न्याय देना है कि करना क्या है आखिर, है ना। तो अब जब अंदर डिबेट चल रही है कि पीऊं नहीं पीऊं, पीऊं नहीं पीऊं, पीऊंगा तो ये होगा, नहीं पीऊंगा तो, मतलब ऐसे खूब सारी डिबेट, डिबेट में यही होता है, उसके क्या फायदे हैं क्या हानि वो बताते हैं। तो अंदर में जबरदस्त डिबेट चल रही है, बीच में इंटेलेक्ट इंटरवीन करती है और इंटरवीन करके बोलती है, एक बार पीने से कुछ बिगड़ नहीं जाता है, पी सकते हैं, एक बार पिएंगे तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, पी सकते हैं। मतलब इंटेलेक्ट ने क्या किया, इंटेलेक्ट पहले ये सब डिबेट को सुन रही थी और इवेल्युएट कर रही थी, और इवेल्युएट करते 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 उसने अभी डिसीजन दे दिया, पी लो, मतलब स्मोकिंग कर लो। और एक बार जैसे डिसीजन आया इंटेलेक्ट का, फैसला उसने दिया, तब आई द बीइंग एक्शन में आ गई, अर्थात सिगरेट उठाई और पीना शुरू किया। दिख रहा है रोल कैसे चल रहा है, ऑफर आया, अंदर में डिबेट चली, माइंड ने काम करना शुरू किया और फिर उस डिबेट के परिणाम स्वरूप इंटेलेक्ट ने इंटरवीन किया, उसने डिसीजन दिया और उसको फिर कर्म में लाया, जो हमने पहले बोला, आई द बीइंग विच थिंक्स विच फील्स विच डिसाइड्स विच टेक्स अ डिसीजन एंड देन विच कम्स आउट इन टू द एक्शन थ्रू द बॉडी। दिख रहा है, तो मैंने एक बार स्मोकिंग कर लिया, नाउ नेक्स्ट टाइम अगेन आई सी अ ऑफर आया फिर से सिगरेट का, अगेन क्या होगा, अगेन माइंड विल स्टार्ट वर्किंग, पीऊ नहीं पीऊ, पीऊ नहीं पीऊ, फिर इंटेलेक्ट इंटरवीन करेगी, पिछली बार पिया तो कुछ बुरा हुआ क्या, कुछ भी तो नहीं बिगड़ा ना, इस बार भी पी लो ना, इस बार भी पी लो, और फिर उसको एक्शन में ला लिया। तीसरी बार फिर से ऑफर आई, फिर माइंड ने वर्क किया, फिर इंटेलेक्ट ने बोला, दो बार पिया कुछ दिखाई दिया क्या, हानि हुई क्या, कुछ कुछ तो नहीं, सब लोग पीते कुछ तो हानि नहीं होती, पी लो, मजा भी तो आया था ना आपको पीने में, पी लो। तीन बार चार बार पांच बार ऐसे करते गए आया ऑफर, उसको एक्शन में, इधर चला लेकिन फिर एक्शन में आ गए, ऑफर आया इधर चला एक्शन में आ गए, ऑफर आया इधर चला एक्शन में आ गए, ऐसा करते करते बन जाती है आदत, जिसको कहते हैं संस्कार, जिसको कहते हैं पर्सनालिटी ट्रेट्स, जिसको कहते हैं बिहेवियरल ट्रेट्स। एक बार आदत बन गई, एक बार सिगरेट पीने की आदत बन गई और उसके बाद मुझे एक सिगरेट दिखाई दी, अब क्या होगा, आदत बन जाने के बाद जब वो सामने आ रही सिगरेट, अब की बार माइंड में दो थॉट चलेंगे, दो थॉट चलेंगे, और जब दो थॉट चलेंगे ही नहीं, डिबेट चल ही नहीं रही, तो फिर फैसले देने वाले टीम की जरूरत है, फैसला लेने वाले, डिबेट ही नहीं है तो फिर टीम क्या किस काम की। तो मतलब एक बार आदत बन गई, एक बार संस्कार बन गया, तो माइंड और इंटेलेक्ट ये दो फैकल्टी के काम भी ठप्प पड़ गए, माइंड के सोचने का काम बंद हो गया, इंटेलेक्ट का डिसीजन लेने का रोल खत्म हो गया और संस्कार की वर्किंग शुरू, वो ऑटोमेटेड वे में आ गया। तो इसका मतलब क्या, इससे लर्न करना है हमको, क्या लर्निंग है कि कोई भी नई चीज 15 बार 20 बार 25 बार 30 बार रिपीटेडली अगर किया, उसके बाद वो बन जाती है आदत, उसके बाद वो बन जाता है संस्कार। और एक बार जब संस्कार बन जाता है फिर वो हमारे से अपने आप हो जाता है। क्या हो जाता है? अपने आप हो जाता है। सोचने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत नहीं है। तो एक लर्निंग ये कि एक बार आदत बन जाए उसके बाद माइंड एंड इंटेलेक्ट का रोल खत्म, अपने आप एक्शन में आ जाएंगे। दूसरी लर्निंग ये कि ये आदत क्रिएट किसने की? मैंने। 15-20-30 बार रिपीटेडली करने से मैंने किया तो आदत का क्रिएटर कौन? इसीलिए अगर ये आदत अच्छी नहीं तो उसका डिस्ट्रॉयर कौन? उसका डिस्ट्रॉयर भी मैं। और इसलिए हम अपने जीवन में देख लें, अगर कोई ऐसी आदत दिख रही है जो परेशान करती है, जिसके लिए हम कहते क्या करूं बहन जी, मेरी आदत बन गई है, मैं नहीं चाहती हूं पर मेरी आदत बन गई है, तो याद कर लेना ये आदत किसने क्रिएट की थी, कौन था क्रिएटर? मैं। तो डिस्ट्रॉयर भी मुझे ही बनना पड़ेगा, और डिस्ट्रॉयर भी मुझे ही बनना पड़ेगा मतलब उसका जो अपोजिट है। जैसे गुस्सा करना मेरा संस्कार बन गया है कि मुझे पता भी नहीं चलता मैं गुस्सा कर लेती हूँ, तो कहते क्या करूं बहन जी, मैं तो नहीं चाहती थी पर निकल आया मेरे से। तो ये जो मेरी आदत है इसको बदलना चाहती हूँ, तो गुस्से का अपोजिट क्या है? शांत रहना था मुझे, तो ये शांत रहने वाला संस्कार बनाने के लिए 15-20-30 बार अटेंटिव रहना पड़ेगा, अटेंटिव रहना पड़ेगा। अटेंटिव थे ना, हर बार सिगरेट आती थी, अटेंटिव थे, हर बार मन सोचता था पीऊं नहीं पीऊं, पीऊंगा तो ये होगा, नहीं पीऊंगा तो ये होगा। अंदर कितनी डिबेट चल रही है ना, तो एक रॉन्ग चीज को लाने के लिए भी अंदर डिबेट चलती है और उसके बाद वो आती है, तो राइट चीज के लाने के लिए नहीं हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता है। सो दिस इज द मैकेनिज्म हाउ टू चेंज अवर संस्कार, जिसके लिए हमको आज परेशानी है कि बहन जी जानता हूँ झूठ नहीं बोलना है, जानता हूँ गुस्सा नहीं करना है, जानता हूँ चीट नहीं करना है, जानता हूँ किसी को टांट नहीं मारना है, जानता हूँ बीच किसी के बीच में जाके बड़बड़ नहीं करना है, पर आदत के वशीभूत हूँ क्या करूँ? तो अपने आप को याद दिला देना आदत की क्रिएटर भी हम ही थे, आदत के डिस्ट्रॉयर भी हमें बनना है, और उसके लिए हमें अटेंटिव, हर बार जब वो सिचुएशन आती है लेट मी बी अटेंटिव और फिर इनर डायलॉग चलेगा और धीरे 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 एक नया संस्कार भी हमारा बन जाएगा। अब ये जो संस्कार है हमारे, ये 5 प्रकार के होते हैं। हर आत्मा के पास 5 प्रकार के संस्कार हैं। नंबर 1 माता पिता से मिले संस्कार, परिवार से मिले संस्कार। मतलब कई बार आप छोटों बच्चों को देखते हैं कि बिल्कुल माँ जैसा दिख रहा है, या बिल्कुल उसके चलने की स्टाइल बिल्कुल अपने बाप पर गई है, तो जैसे ही उसको देखेंगे अरे ये तो बिल्कुल अपनी माँ जैसे दिखता है, अरे ये तो बिल्कुल अपने बाप जैसा चलता है, तो ये क्या है? माता पिता से मिले हुए संस्कार, परिवार से मिले हुए संस्कार। फिर दूसरे हैं वातावरण से मिले हुए संस्कार, संस्कार अक्वायर्ड थ्रू एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का मतलब जहाँ हम रहते हैं, जिस सिटी में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिन दोस्तों के संग रहते हैं, जिस स्कूल में पढ़ाई करते हैं, जिस जहाँ जाकर ट्रेनिंग लेते हैं, ये सब वातावरण में आ गया ना। कहते हैं ना जैसा होता है संग वैसा लगता है रंग। तो जिन दोस्तों के साथ रहते रहते कुछ हम अक्वायर कर लेते हैं, जहाँ जिस कंट्री में रहते हैं वहां के नियमों के आधार से हम अपने आप को ढालते हैं। भारत में रहते हैं तो लेफ्ट साइड चलना है, और अमेरिका में जाना है चलना है तो वहां वाले वो वाला संस्कार डेवलप करते हैं, हम यहाँ लेफ्ट में चलने का संस्कार। इसी को कहा कि वातावरण से मिले हुए संस्कार, जिसको हम क्रिएट कर रहे हैं या अक्वायर कर रहे हैं, हमें मिल रहे हैं। तीसरे प्रकार के संस्कार हैं जिसको कहते हैं पास्ट बर्थ के संस्कार, पूर्व जन्म के संस्कार। मैं इस समय आत्मा इस शरीर में हूं, तभी तो जीवन है ना। जीवन माना ही शरीर और बॉडी का कॉम्बिनेशन, कहा ना ह्यूमन बीइंग, बीइंग प्लस ह्यूमन है तो लाइफ है, और बीइंग बॉडी से चली गई तो डेथ है, यही था ना। तो जब तक मैं आत्मा इस शरीर में हूं, मैं ये संस्कार अक्वायर करते जा रही हूं, पेरेंट्स के, वातावरण के, और ये जो अक्वायर कर रही हूं वो यहां पे जमा होते जा रहे हैं संस्कार में। एक और बात कि जब आत्मा कर्म में आती है, मतलब पहले ऑफर आया, मन ने सोचा सोचा सोचा, इंटेलेक्ट ने डिसीजन दिया, फिर आत्मा उसको कर्म में लेकर आई। हर टाइम आत्मा हर वो चीज जिसको कर्म में लेकर आ रही है, उसका निशान आत्मा के ऊपर, इम्प्रेशन आत्मा के ऊपर पड़ता जाता है, और वही इम्प्रेशन रिपीटेडली पढ़ते पढ़ते संस्कार बनता है। तो इस शरीर में रहकर मैंने कितने सारे संस्कार अक्वायर किए या नहीं किए। अब समझो मेरा इस आत्मा का इस शरीर को छोड़ने का टाइम आ गया, तो आत्मा यहां से निकलकर आगे की यात्रा पर जाएगी, माना दूसरे शरीर में एंटर करेगी, तो वहां पर क्या लेके जाएगी अपने साथ में। दिखने वाली हर चीज जिसके आधार पे हम आज दिन तक परिचय दे रहे थे, जो मेरे पास प्रॉपर्टी है, जो मेरे पास पोजीशन है, जो मेरे पास परिवार है, जो डिग्रियां हैं, उसके आधार पर जो हम परिचय दे रहे थे, वो सब छोड़ के जाएंगे हम यहाँ पे। कुछ भी लेकर नहीं जाएगी आत्मा, जिसको मैंने बेस बनाया था अपना अपना परिचय देने के लिए, वो हर चीज में यहां छोड़कर जाऊंगी। लेकर क्या जाऊंगी साथ में, संस्कार। तो जब ये आत्मा अगली बॉडी में जाएगी, तो यहां वाले संस्कार जो वहां गए, तो उसको क्या कहलाएंगे, पास्ट बर्थ के संस्कार लेकर आई है। तो ऐसे इस बॉडी में आने से पहले हम किसी और बॉडी में थे, तो पास्ट बर्थ से हम इसमें संस्कार लेकर आए हैं, और वो पास्ट बर्थ के संस्कार जो कई बार हमें दिखते हैं, कई बार घर में देखते हैं, सारे लोग नॉन वेज हैं, लेकिन एक बच्चा है जो बिल्कुल टच नहीं करता है। पता नहीं किसने सिखाया इसको, मालूम नहीं इसके कोई पूर्व जन्म के संस्कार है ना। एक बच्चा, घर के सारे लोग दुनियादारी में फंसे, मतलब बाहर की दुनिया का लुत्फ ले रहे, एक बच्चा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं उसको, वो आध्यात्मिकता में लगा हुआ है, किसने सिखाया इसको, तो बोला इसके पूर्व जन्म के संस्कार है। तो ये तीन प्रकार के संस्कार हो गए। अब चौथे प्रकार के संस्कार हैं जिसको कहते हैं विल पावर से क्रिएट किए गए संस्कार, दृढ़ता के आधार से क्रिएट किए गए संस्कार। उदाहरण के लिए ये जो तीन प्रकार के संस्कार हमने देखे, परिवार से, फैमिली से मिले संस्कार, एनवायरमेंट से, वातावरण से मिले संस्कार, पास्ट बर्थ पूर्व जन्म से मिले संस्कार। ये जो तीन प्रकार के संस्कार है, इनमें से समझो आज वर्तमान में मेरे पास झूठ बोलने का संस्कार है। अब ये झूठ बोलने का संस्कार परिवार से भी मिला हुआ हो सकता है, वातावरण से भी मिला हुआ हो सकता है, या पास्ट जन्म का भी, वो मुझे क्लैरिटी नहीं है पास्ट का है या कहाँ का है, पर है मेरे पास क्या है, झूठ बोलने का संस्कार है, और इस झूठ बोलने के संस्कार ने मुझे बहुत हानि पहुंचाई है। क्योंकि जब भी मैं इंटरेक्शन में जाता हूँ लोगों के बीच में, जब काम धंधा करने, तो लोग मेरे पर, क्योंकि मेरे को झूठ बोलने की आदत है, थोड़े समय तो मेरे पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन कुछ दिन साथ में रहने के बाद उनको पता चल जाता है और कहते हैं गेट आउट, और मैं अभी क्या हो गया हूँ, निकम्मा, कोई मुझे काम देता नहीं है। तो फिर हमारी इनर डायलॉग चलती है, मेरे इस झूठ बोलने के संस्कार ने आज मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, आज मेरी ये हालत हुई है। अंदर डायलॉग चलती है, कुछ भी हो जाए अब तो मुझे झूठ नहीं बोलना है, सत्य ही बोलना है। मैंने डिसीजन लिया, मैंने डिटरमाइन किया, तो क्या मैं सचमुच झूठ बोलने का संस्कार बदल सकती हूँ, बदल सकती हूँ या नहीं बदल सकती हूँ, बदल सकती हूँ। इसको ही कहते हैं कि डिटर्मिनेशन के आधार पर, विल पावर के आधार से जो हम क्रिएट करते हैं संस्कार। तो अब ये जो डिटर्मिनेशन किया है कि मुझे झूठ नहीं बोलना, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे सच बोलना है, और हर बार ऑफर आया था झूठ बोलने का, मैंने सच बोला, फिर ऑफर आया झूठ बोलने का, फिर सच बोला, 15-20-25 बार कंटिन्यूसली रिपीटेडली किया, अगेन नाउ इट बिकम अ संस्कार। बदल गया मेरा संस्कार किसके आधार से, मेरे डिटर्मिनेशन के आधार से। हर बार मैं अटेंटिव रही, डिटरमाइन किया था, डिसाइड किया था, दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू से लाई, इसका मुझे कितना भी परिणाम भुगतना पड़े, पर मेरे को झूठ नहीं बोलना है। तो मैंने सच बोलने की ठानी और मेरा अब सच बोलने का संस्कार तैयार हो गया। इसको कहते हैं विल पावर से क्रिएट किए गए संस्कार। कितने हो गए अभी तक, 4 प्रकार के संस्कार। तो ये जो 4 प्रकार के संस्कार है, ये सब हमने क्रिएट किए या अक्वायर किए। लेकिन आत्मा के 5वें प्रकार के संस्कार है, जिसको कहा जाता है आत्मा के ओरिजिनल संस्कार, आत्मा के मूल संस्कार, मौलिक संस्कार। और जब कहा मूल संस्कार, मौलिक संस्कार, ओरिजिनल संस्कार, इट मीन्स आत्मा ने इसको कहीं से अक्वायर नहीं किया है, आत्मा ने इसको कहीं से हासिल नहीं किया है, आत्मा ने इसको क्रिएट नहीं किया है, आत्मा के पास विद्यमान है वो पहले से ही, जिसको कहते हैं डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट इट वाज देयर, वो आत्मा के पास मौजूद है। क्यों मौजूद है, क्योंकि आत्मा क्या है, एक एनर्जी है, और एनर्जी की कोई ना कोई कोर क्वालिटी तो होती ही है ना, होती है ना, कोई भी चीज बिना क्वालिटी के होती है क्या, कुछ ना कुछ तो उसमें होता ही है ना, प्रॉपर्टीज तो होती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल सन है, सूर्य है, उसकी कोर क्वालिटी या कोर प्रॉपर्टी क्या है, हीट एंड गिविंग लाइट एंड हीट। तो हर एक की कुछ ना कुछ एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे पानी है, पानी का क्या है कोर क्वालिटी, शीतलता। तो ऐसे ही आत्मा एक एनर्जी, उसकी भी कोर क्वालिटी है, उसी को ही कह रहे हैं आत्मा के ओरिजिनल संस्कार। तो वो चारों जो है अक्वायर है, जिसको बदला जा सकता है, जिसको खत्म किया जा सकता है। जैसे बोला ना, झूठ के संस्कार को हम खत्म कर सकते हैं सच, लेकिन ये आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार है वो ओरिजिनल है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। अब जल की शीतलता को खत्म कर सकते हो सदा सदा के लिए, थोड़े समय के लिए कर सकते हो, कि गैस के ऊपर रखा, उसको हीट मिला तो जल की शीतलता का अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही थोड़े समय के लिए बिना गैस के ऐसे ही छोड़ दो तो वापस शीतलता पर। सूर्य है, जिसका कोर क्वालिटी, कोर प्रॉपर्टी क्या है, हीट एंड लाइट। बादल बीच में आ जाए तो मैं कुछ समय के लिए उसके हीट एंड लाइट को अनुभव नहीं कर सकती, लेकिन क्या आप उसको छीन सकते हो, आप अनुभव नहीं करे वो दूसरी बात है, लेकिन अब भी हीट एंड लाइट उसके पास है। अगर सन के पास हीट एंड लाइट नहीं है, मतलब वो सन नहीं है, वो सूर्य नहीं है, वो सदा उसके पास ही रहेंगे, उसको कोई छीन नहीं सकता है। तो ऐसे कौन सी आत्मा की क्वालिटीज है जो सदा उसके पास रहती है? हाँ, जिसको ही तो हम ढूंढ रहे हैं बाहर, क्योंकि कहा आत्मा ओरिजिनली व्हाइट इन कलर। क्या है? व्हाइट इन कलर, और व्हाइट का मतलब सेवन कलर्स। तो पहले ये समझ ले कि अगर ये व्हाइट है लेकिन दिन के अंत में इसमें कुछ दाग धब्बे लग जाते हैं। अगर मेरा काम किचन का है कि सवेरे मैंने नहा धो के व्हाइट वस्त्र पहन के मैंने किचन में जाके काम करना है, तो रात तक कहीं ना कहीं मैं कितना भी संभालूं, कहीं तेल का छींटा तो कहीं हल्दी का छींटा होगा। किसी का काम है पेंटिंग का, कितना भी वो दूसरा ऊपर से पहन ले ड्रेस, लेकिन ब्रश कहीं ना कहीं उसका इधर उधर लग ही जाता है, उसमें कुछ ना कुछ लाल ये पीला कुछ लग ही जाएगा। किसी का काम गैराज में है, भले उसने ड्रेस भी दूसरी पहनी हो लेकिन कहीं हाथ में भी कोई एक हाथ में काला लगा होगा ना, तो जब नई ड्रेस पहनेगा ना उसमें वो लगा देगा। होता है नहीं होता है? तो हरेक का जर्नी जिस प्रकार का है, हरेक का वर्क प्लेस जिस प्रकार का है, उस प्रकार का उस वाइट के ऊपर जो सुबह हम पहन के निकले हैं और कारोबार में, उसके ऊपर दाग लगते जाते हैं। लेकिन दाग को देखकर परेशान होना होता है या वाइस बनकर उसको धुलाई करके निकालना होता है, या उस दाग को ही कहना होता है नहीं ये तो मेरे ड्रेस की ओरिजिनल डिजाइन है, ऐसे बोलना होता है आज हमने ये गलती की। जैसे वो गलती की ना हमने कि जो जो मिलते गया उसको मैं बोलती गई। शरीर मिला है मेरा शरीर, लेकिन मैंने सोचा ये मैं हूं। नाम मिला, मैंने सोचा ये मैं हूं। मैंने कहा आप कौन है? कहा मैं सुनीता हूं, मैं सुनील हूं। अरे भाई सुनीता सुनील नाम है। किसी ने पूछा आप कौन है तो कहा हिंदू या मुस्लिम। अरे भाई वो धर्म है। आप कौन है तो कहा मैं भारतीय हूं, मैं अमेरिका। अरे भाई वो नेशनैलिटी है। किसी ने कहा कौन है तो कहा मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर। अरे भाई वो प्रोफेशन है। किसी ने कहा क्या हो? कहा मैं मेल हूं फीमेल हूं। अरे वो जेंडर है। आप कौन है वो तो उत्तर ही नहीं आ रहा है आपका, वो तो आप जो हासिल करके बैठे हो वो उत्तर दे रहे हो। और उस चक्कर में जो मैं हूं वो हम भुला कर बैठे थे। ऐसे ही ये जो इतने सारे दाग लग गए ना, उस दाग को हमने मैं समझा। हमको कौन से दाग लगे? कौन से दाग लगे? क्योंकि डिफरेंट जर्नी, हर जन्म में नया कॉस्ट्यूम, नए माता पिता, नया एनवायरमेंट, तो नए नए संस्कार मिले हर बार। फिर वो शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, पास्ट बर्थ के कैरी गए, तो हर बार अलग अलग दाग लगे, हर बार अलग अलग दाग लगे। और दाग माना ही क्या? संस्कार माना ही कौन सा संस्कार? जो पसंद नहीं आता है। हल्दी का छींटा पसंद आएगा क्या आपको? तो कौन से संस्कार दाग के रूप में? गुस्सा, नफरत, इन्फीरियोरिटी, सुपीरियोरिटी, गिल्ट, रिग्रेट, रिजेंटमेंट, सेल्फ पिटी, ये सब हमने दाग के रूप में अपने ऊपर चढ़ा लिया। लेकिन चूंकि ओरिजिनल याद नहीं, सिर्फ यही दिख रहा है, तो हम अपना परिचय कैसे देते हैं? जी मैं बहुत गुस्से वाली हूँ। कौन हूँ मैं? मैं बहुत गुस्से वाली हूँ। बहन जी मुझे थोड़ा ही कुछ देखते हो ना बहुत जलसी होती है, बहुत जलस करने वाली हूँ मैं, बहुत जलसी हूँ। ये मैं हूं नहीं, ये मेरे ऊपर लगे दाग हैं। ये हमें समझना पड़ेगा। क्यों हम इन दागों को मैं समझ लिया? क्योंकि इस सफेद साड़ी के ऊपर मैं यात्रा पे चलती गई, दाग लगते गए, धुलाई किया ही नहीं, तो दाग के ऊपर दाग, दाग के ऊपर दाग, दाग के ऊपर दाग लगते लगते वो व्हाइट वाली लेयर तो पूरी ढक गई, व्हाइट वाली लेयर तो पूरी ढक गई, और उसके ऊपर दाग धब्बे दिख रहे। तो बहुत दिनों के बाद में वो भूल ही गई कि ये साड़ी व्हाइट थी। कहा बहन जी साड़ी नहीं, बहन जी ओरिजिनली साड़ी ऐसी है। लेकिन मुझे वो पहन के पता नहीं कुछ कुछ महसूस हो रहा है, तो चलो एक नई नई वाली साड़ी खरीद के लाते सफेद। ये हम करते हैं, ऐसे ही दाग धब्बे हमको लगते गए। हमने सोचा मैं ये हूं, लेकिन उसमें बेचैनी तो हो रही है, जैसे गंदा कपड़ा पहन के बेचैनी होती है, तो ओरिजिनल की याद आती तो सोचते चलो मार्केट में जाके खरीद के लाते। हमने भी यही किया, इन दागों से परेशान होते होते हमने सोचा चलो एक नई साड़ी खरीद के लाते, अर्थात हमने सोचा चलो हम हैप्पीनेस कहाँ ढूंढते हैं, दुनिया की चीजें अक्वायर करते जाओ और डिग्रियां अक्वायर करते जाओ और हमको हैप्पीनेस मिल जाएगी। शांति से परेशान थे, सोचा मंदिर में चलो, मस्जिद में चलो, गुरुद्वारे में चलो, संतों के पास चलो, महात्माओं के पास चलो, पर्वतों में चलो, पहाड़ों में चलो, शांति लेकर आएंगे, लोगों से मेलजोल बढ़ा प्यार लेके आएंगे, पर वो उधर है नहीं। कर लिया ना अनुभव सभी ने, है उधर नहीं है ना, उधर वो उधर नहीं है, वो तो मेरी ओरिजिनल क्वालिटी है, और मेरी ओरिजिनल क्वालिटी है इसलिए मुझे उसकी कशिश होती है। अगर वो मेरी ओरिजिनल क्वालिटी नहीं होती ना, मुझे कशिश भी नहीं होती कि मुझे शांति चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे खुशी चाहिए। वो हो रही है इसका मतलब ये है कि वो मेरा ओरिजिनल क्वालिटी है। तो क्या है मेरी ओरिजिनल क्वालिटी? नंबर वन, हु एम आई एम अ पीसफुल सोल, शांति मेरा गुण है। हु एम आई एम अ प्योर सोल, वाइट कहा ना, मैं पवित्र हूं, शुद्ध हूं। हु एम आई एम अ पावरफुल सोल, मैं शक्तिशाली हूं, अपने आप में शक्तिशाली हूं। Who am I? I'm a knowledgeful soul. मुझे समझ है, मैं वाइस हूं। देखो यहां पे सिर्फ मैंने आपके सामने बातें रखी, आप समझते जा रहे हो ना, मीन्स आई एम वाइस ना। सिर्फ हुआ क्या था, भूल गए थे, हुआ क्या था उस तरफ हमने ध्यान नहीं दिया था, सिर्फ इतना ही तो हुआ था ना। तभी का आई एम नॉलेजफुल सोल, आई एम वाइस एंड आई एम हैप्पी सोल, आई एम नॉट स्ट्रेस्ड, आई एम हैप्पी सोल। लेकिन ऊपर से दाग लगा है और इसलिए उस हैप्पीनेस की कशिश हो रही है। एंड आई एम अ लवफुल सोल, प्यार मेरी खुद की क्वालिटी है। और जब ये छो आ गए ना मेरे पास, पीस आ गया, पावर आ गया, प्योरिटी आ गई, लव आ गया, नॉलेज आ गया, हैप्पीनेस आ गया, तो ब्लिसफुल हो गए ना, हो गए ना ब्लिसफुल। तो ये सेवन क्वालिटीज आत्मा की, जो का व्हाइट कलर सेवन कलर का कॉम्बिनेशन, ये आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज है। करना क्या है फिर, अगर है तो ये सदा सदा मेरे साथ रही है, चाहे मैं जब भी अशांत हुई हूं, जब भी मुझे जेलसी हुई है, जब भी मैंने अपने आप को वीक महसूस किया, उस समय भी मेरे गुण मेरे पास थे। पर प्रश्न उठता है, जब मेरे पास है तो अनुभव में क्यों नहीं आता है ना, क्यों नहीं आता है? तभी कहा देखो, जैसे जैसे एक एक चीज हम अक्वायर करते हैं ना, देयर इज समथिंग विच इज हैपनिंग इनसाइड। फॉर एग्जांपल, एक छोटा बच्चा है, स्कूल जाता है, अभी उसने कुछ भी हासिल नहीं किया है। स्कूल जाते जाते एक दिन कहा जाता है आप क्लास के मॉनिटर हो। अक्वायर किया उसने, एक पोजीशन अक्वायर की उसने, कि अभी अभी तक वो क्या था, स्टूडेंट था, लेकिन आज उसके उसको बताया गया आप ये जितने भी स्टूडेंट हैं इस क्लास में उनके आप क्या हो, मॉनिटर हो। तो समथिंग इनसाइड विल हैपन और नॉट, क्या हैपन होगा? ईगो भी आएगा, आई एम सो एंड सो, अभी तक तो मैं स्टूडेंट कह रहा था लेकिन अभी मैं क्लास का मॉनिटर हूं। और जैसे ही मैंने कहा मैं क्लास का मॉनिटर हूं, वैसे ही अंदर में क्या भाव उत्पन्न हुआ? नहीं, अहंकार तो हुआ, मतलब अहंकार किस रूप में आता है वो बताओ, और बोलो, और बोलो। जब तक मैं क्लास मॉनिटर की स्टेटस पे नहीं था ना, मुझे सिखाया गया था बेटा सबके साथ प्यार से चलना है, सबको रिस्पेक्ट देना है। लेकिन जिस दिन मुझे ये टाइटल मिला ना, जो कहा ना व्हेनेवर वी अक्वायर समथिंग हैपेंस इनसाइड एंड व्हाट दैट हैपेंस, नाउ आई एम सो एंड सो, देयरफॉर नाउ आई एम नॉट सपोज टू गिव लव एंड रिस्पेक्ट, आई एम सपोज टू गेट लव एंड रिस्पेक्ट। क्लियर हुआ? जैसे ही कुछ मैंने हासिल किया अपने जीवन में, अंदर में क्या हो रहा है, अब मैं क्यों लोगों को प्यार दूंगा, मैं क्यों सम्मान दूंगा, मैं तो पोजीशन पे हूं, लोगों का काम है मुझे प्यार देना। लेकिन जब तक मैंने अक्वायर नहीं किया था, मैं सबको प्यार दे रहा था, मैं सबका रिस्पेक्ट कर रहा था। कैसे कर रहा था? मेरा गुण है, मेरे पास वो मेरी क्वालिटी है, मैं उस क्वालिटी को यूज कर रहा था, दे रहा था मतलब मैं यूज कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने कुछ अक्वायर किया, अंदर में ईगो आया, नाउ आई एम सो एंड सो, नाउ पीपल आर सपोज टू गिव मी लव एंड रिस्पेक्ट, तो मेरी क्वालिटी को मैंने यूज करना बंद कर दिया। मैंने अपनी क्वालिटी को जो मेरे पास आज भी है यूज करना बंद कर दिया। एंड व्हेन यू डोंट यूज समथिंग यू लूज इट। ऐसा ही होता है। उदाहरण के लिए आप किसी कंपनी में गए, अभी बिल्कुल नए नवेले ज्वाइन किया है, तो बुद्धि में क्या रखेंगे, मुझे सबको प्यार देना है, सबको रिस्पेक्ट देना है, और मुझे अपना काम खुद अपने हाथों से करना है। लेकिन कुछ साल बीते, मेरी पोजीशन बढ़ती गई, टाइटल मिलते गए, अब मैंने क्या बोला, नाउ आई एम सो एंड सो, आई एम नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मी, अदर्स आर गोइंग टू वर्क फॉर मी। तो अब तक मैं अपना हाथ यूज कर रहा था कंप्यूटर चलाने के लिए, पानी लाने के लिए, सामान को इधर से उधर, फाइल को रखने के लिए, अब मैं सो एंड सो बन गया ना, तो कंप्यूटर भी मेरे लिए कोई और चलाएगा, पानी भी भर के कोई और लाएगा, मेरी फाइल भी उठा के, तो मेरा हाथ धीरे धीरे काम करना, तो कैसे खोया मैंने, काम करने की शक्ति मेरे हाथ में थी ना। जब तक मैं सो एंड सो नहीं बना था, तब तक मेरे हाथ को शक्ति थी, मैं कंप्यूटर भी चलाता था, मैं पानी भी भर के लाता था, मैं फाइल उठा के यहां से वहां भी रखता था, लेकिन सो एंड सो के नशे में रहकर मैंने इसके काम करने की शक्ति गवाई, गवाई नहीं गवाई, न सिर्फ काम करने की शक्ति गवाई, सो एंड सो बन गया, तो अब मैं प्यार क्यों दूंगा, मैं क्यों रिस्पेक्ट दूंगा, उन्होंने देना है। इसी तरीके से हमारे पास वो क्वालिटी आज भी है, हम सो एंड सो बनकर उसको यूज करना स्टॉप कर दिया, और जैसे ही हमने स्टॉप किया, हमने लूज करना आरंभ कर दिया, और जब लूज हो गई तो कशिश तो होगी, तो फिर मार्केट में ढूंढने जाते हैं, भाई ये अक्वायर करता जाऊंगा खुशी आएगी, ये अक्वायर करूंगा पीस आएगा, ये अक्वायर करूंगा लव आएगा। लेकिन उसके भी अनुभवी बन चुके हैं सभी, कि जितना भी हम फिजिकल दुनिया में कुछ भी अक्वायर कर लो, वो चीजों से तो घर भर जाता है, डिग्रियां तो बहुत आ जाती है, नेम फेम तो बहुत आ जाता है, इन अंदर की खुशी, अंदर की शांति, वो तो जो थोड़ी बहुत थोड़ा लेवल था ना, वो भी डाउन हो गया है, वो भी डाउन हो गया। तो अभी करना क्या है, मेरे पास ये क्वालिटीज है, मैं सो एंड सो के टाइटल को अलग दूर रख के देना आरंभ करूं। जब टाइटल नहीं थे तो मैं दे ही रहा था, ये तो टाइटलों ने मेरा नशा चढ़ा दिया ना, तभी तो बोलते हैं ना पोजीशन पे आ गया है ना, बहुत अभिमान आ गया है, यही बोलते, पैसे वाला बन गया है ना, बड़ा अभिमान आ गया। मतलब क्या होता है उसका, उसका मीनिंग सीधा यही होता है कि जब तक पोजीशन पे नहीं था, जब तक पैसे वाला नहीं था, जब तक डिग्रियां नहीं थी, जब तक नेम फेम नहीं था, एक इंसान के नाते वो प्यार और सम्मान के साथ चल रहा था। लेकिन पैसा क्या आ गया, वो क्या आ गया, वो प्यार सम्मान देना उसने छोड़ दिया, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। तो हुआ क्या, हमारी अपनी ओरिजिनल क्वालिटी को हमने साइड पे रखा और अक्वायर वाले के नशे में जीने लगे, जबकि हम सबको ये सत्य पता है। जैसे ये सत्य पता है कि कि आत्मा अजर अमर अविनाशी दूसरी यात्रा पर चली जाएगी, ये बॉडी मृत्यु को प्राप्त होगी। ये पता है ना सत्य? एक दिन हम सब ने ये शरीर छोड़ना है या नहीं छोड़ना है? तो एक दिन ये शरीर भी छोड़ना है और शरीर को लेकर जो प्रॉपर्टी और ये सब अर्जित किया है वो भी सब छोड़ना है। तो जो छोड़ना है उसके नशे में जी रहे हैं, और जो खुद मेरे पास है उसको भुलाकर एक साइड पे रखकर बैठे हैं। इसी ने हमारे लाइफ का आज जो स्वरूप है वो बनाया है। वरना देखो, एक छोटा बच्चा जो अभी सिर्फ और सिर्फ कुछ मास का है, 2 मास, 4 मास, 6 मास, 12 मास, साल से आगे मत जाओ, तब आप उसको जब देखते हैं तो आप क्या फील करते हैं? क्या फील करते हैं? हाँ, क्यों क्यों एक छोटे बच्चे, वही वाला बच्चा जब बड़ा हो जाएगा 5 साल का वैसा ही फील होगा जब वो हो रहा था? क्यों, क्या फर्क आ गया? वही हम जो किसी कंपनी में फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे थे, सब कहते थे बड़ा रिस्पेक्टफुल व्यक्ति है, लेकिन हम ही 5 साल के बाद क्या हो, क्या जाता है? कुछ अक्वायर कर लेते हैं। छोटा बच्चा जो अभी मासों के अंदर, 12 मास तक अंदर है, अभी उसने कुछ अक्वायर ही नहीं किया है, तो उस अक्वायर की कॉन्शियसनेस नहीं है उसको। और भले आप व्यक्ति जिनके साथ वो नजर से नजर मिला रहा है, आपने अक्वायर किया, लेकिन उसको ये कॉन्शियस नहीं है कि आपने क्या अक्वायर किया है। तो खुद ने भी अक्वायर नहीं किया है तो उसकी कॉन्शियसनेस नहीं है, और जिसको वो देख रहा है, मिल रहा है, उसने क्या अक्वायर किया उसकी भी उसको कॉन्शियसनेस नहीं है। और इसलिए वो अपने बीइंग वाली स्टेज पर है। हम बीइंग है ना, हम आत्मा है ना, जिसकी ये कोर क्वालिटीज अभी बताई मैंने, तो वो उसमें से रेडिएट हो रही है, उसमें से रेडिएट हो रही है। और सामने वाला व्यक्ति, जैसे कहा कि उसको देख के हमें भी अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि वो जब रेडिएट कर रहा है और आपको देख रहा है तो आपके अंदर भी तो ओरिजिनल है ना, वो जाके उसको ट्रिगर करता है और उसकी भी वो इनोसेंस और प्योरिटी और लव आती है बाहर। और इसलिए बच्चे से मिलके हमको भी बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन मैंने भी अक्वायर किया है, आपने भी अक्वायर किया है, आई एम सो एंड सो, आप भी कहेंगे आई एम सो एंड सो, तो ईगो टकराता है, ईगो टकराता है। मैं क्यों उसको लव एंड रिस्पेक्ट दूंगी, मेरी पोजीशन वगैरह, मैं भी क्यों दूंगा, मेरी पोजीशन है। तो ओरिजिनल क्वालिटी दूर रह गई, ईगो क्लैशेस हुए, और उस ईगो से फिर प्रॉब्लम्स आ रही है। एंड दिस इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हु एम आई। नाउ वन मोर स्टेप, कि ये पीस, पावर, हैप्पीनेस, लव, इसकी भी डेप्थ में उतरना, कि है क्या चीज, ये पीस भी आखिर क्या है, ये शांति भी आखिर क्या है, ये खुशी भी आखिर क्या है, क्या है ये सब? फीलिंग्स है। आपने कभी कोई कैसेट लगाई होगी और उसको सुना होगा, जिसको सुनकर लगा होगा आह बड़ी शांति अनुभव हुई। कोई कैसेट लगाई होगी जिसको सुनकर आपके पैर थिरकने शुरू हो गए होंगे, आप डांसिंग मोड में आ गए। आपने कोई कैसेट लगाई जिसको सुनकर आपको कुछ बोध हुआ, अच्छा अभी मुझे बात समझ में आई, है ना, ऐसे बोलते हैं हम लोग। वो है क्या, वो जो रिकॉर्ड हुआ था, जो बज रही थी टेप, उसमें था क्या? वाइब्रेशन था, देयर वाज ओनली एंड ओनली वाइब्रेशन था। जिस वाइब्रेशन को सुन के आपको शांति मिली, वो वाइब्रेटिंग पैटर्न एक अपने तरीके का था। जिस वाइब्रेशन को सुनकर आपको खुशी मिली, उसका वाइब्रेटिंग पैटर्न अपना था। जिसको सुनकर आपको कुछ बोध हुआ, उसका वाइब्रेटिंग पैटर्न कुछ अपना था। इसका मतलब अलग अलग वाइब्रेटिंग पैटर्न गिव्स अलग अलग फीलिंग, यही हुआ ना इसका मतलब। अब समझो, मैंने एक कैसेट प्लेयर में एक कैसेट जो कि बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग से भरी हुई है वो डाली उसके अंदर और प्ले किया, सुनती जा रही हूँ, काम करती जा रही हूँ, सुनती जा रही हूँ, काम करती जा रही हूँ। लेकिन कैसेट है 45 ड्यूरेशन होती है, 30 या 45, फिर स्टॉप हो जाता है, फिर मैंने फिर प्ले किया, फिर स्टॉप थ्रू आउट द डे ऐसा चला, और वो कैसेट प्लेयर किस पर चल रहा है, बैटरी पर चल रहा है। तो थ्रू आउट द डे प्ले स्टॉप चलता रहा, तो एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, बैटरी है ना, खत्म हो जाएगी या नहीं होगी, खत्म हो जाएगी, तब तो गीत बजना ही बंद हो जाएगा। लेकिन बिफोर दैट, खत्म होने को आ रही है, उस समय क्या होता है, जब खत्म हो गई तो बंद हो गया, लेकिन अभी खत्म होने को आ रही, खत्म नहीं हुई है, जैसे अभी क्लास खत्म होने को आ रही, खत्म नहीं हुई अभी खत्म होने को आ रही है, तो उस समय क्या होता है, उस समय क्या होता है, जो मैं मेलोडियस सॉन्ग सुन रही थी, सुरीले गीत सुन रही थी, वो कर्कश आवाज में बदल गया, जैसे कोई पिया हुआ है और बड़बड़ कर रहा है, होता है या नहीं होता है, होता है सर, अनुभव है सबको, अगर मैं वाइस हूँ, नॉलेजफुल हूँ, अच्छा ये ना शायद बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, इसलिए हुआ है, तो अपन क्या करते हैं, बैटरी को चार्ज कर लेते हैं, और बैटरी को चार्ज करके डाल दिया, तो वापस मेलोडियस सॉन्ग्स, वो अभी वो कर्कश आवाज, वो पियक्कड़ की आवाज नहीं है। व्हाट इज द लर्निंग फ्रॉम दिस, हमको हर चीज से लर्न करना है, एक एक चीज से क्या हो रहा, लर्निंग इसकी, लर्निंग ये है उसके अंदर जो रिकॉर्डेड वाइब्रेटिंग पैटर्न था वो उसी तरीके से फिर से प्ले हो, मतलब उसी तरीके से वाइब्रेट हो, उसके लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड। तो जब तक वो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज जो रिक्वायर्ड था वो पहुंच रहा था, इट वॉज वाइब्रेटिंग इन द वे इट वॉज रिकॉर्डेड, बट वेन इट बिकम्स लेस, तब वो जिस पैटर्न में रिकॉर्डेड है उस पैटर्न में वो प्ले नहीं होता है, उसका पैटर्न डिस्टॉर्ट हो जाता है, विकृत हो जाता है, और उस विकृत पैटर्न की रिजल्ट है वो पियक्कड़ वाली आवाज आ रही है। क्लियर हुआ? ऐसे ही जब हमने कहा ना शांति प्रेम खुशी क्या है, आत्मा की क्वालिटी है, और आत्मा की क्वालिटी है का मतलब क्या है, आत्मा अपने आप में एक एनर्जी है, और एनर्जी का स्वभाव है वाइब्रेट होना। तो जब आत्मा प्योर होती है, मतलब फुल चार्ज होती है, आत्मा ऐसे वाइब्रेट होगी जिसकी फीलिंग को एक नाम दे दिया हमने शांति। अब आत्मा वाइब्रेट होगी तो वैरायटी वे में वाइब्रेट होगी ना, तो एक वाइब्रेटिंग पैटर्न जिसकी रिजल्टेंट फीलिंग को नाम दिया शांति, दूसरा वाइब्रेटिंग पैटर्न जिसके रिजल्टेंट फीलिंग को नाम दिया खुशी, ऐसे एक एक को नाम देते गए। लेकिन चूंकि दाग के ऊपर दाग चढ़ते गए ना, तो दाग के ऊपर दाग चढ़ना माना बराबर अमाउंट में चार्ज नहीं पहुंचना, वाइब्रेशन डिस्टॉर्ट हो गया, और आत्मा ने एक डिस्टॉर्टेड पैटर्न में वाइब्रेट हुई, उसका नाम दिया अशांति, उसका नाम दिया ना खुशी, उसका नाम दिया नाराजी। समझ में आए? और इसीलिए क्या कहा हमने, राजयोग के तीन स्टेप्स, पहला स्टेप आत्मा जिसको आज हमने डिटेल में समझा, दूसरा स्टेप परमात्मा, तीसरा स्टेप इस आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करके चार्ज करना। जैसे उस बैटरी को चार्ज किया तो मेलोडियस सॉन्ग फिर से मेलोडियस मिले ना, तो हमारे पास वो सब कुछ है, सुख शांति प्रेम आनंद जिसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं, आत्मा कैन वाइब्रेट इन दैट वे, बट उसके लिए चार्जिंग चाहिए उसको। तो फर्स्ट चार्जिंग है, आई शुड रिमाइंड माई सेल्फ आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ लवफुल सोल, क्योंकि फाइल्स बनी हुई है, फाइल्स को प्ले करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, इतने सारे बटन्स लगे हुए अलग अलग लाइट के लिए, लेकिन जो लाइट चाहिए उस बटन को दबाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए हमने कहा ना इट इज विथ मी बट वी हैव स्टॉप्ड यूजिंग इट, लेकिन जो दाग लगा है ना, मतलब नई नई फाइल हमने क्रिएट की और हम उसी को बार बार प्ले कर रहे हैं बोल बोल के, मैं तो हुई गुस्से वाली, मेरे को तो जेलसी होती है, मैं तो हुई टेंशन वाला, ऐसा बोल बोल के हम अपने आप को लाइसेंस दे देते हैं गुस्सा करने का, हम अपने आप को लाइसेंस दे देते हैं टेंशन करने का। तो अब वो नहीं करना है, अपनी ओरिजिनल क्वालिटीज को याद करना है कि आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, सो आई एम रिमाइंडिंग मींस आई एम प्रेसिंग दैट फाइल को क्लिक कर रही हूँ, और जैसे उस फाइल को क्लिक कर रही हूँ आत्मा एनर्जी उस रूप में वाइब्रेट हो रही है और उस रूप में वाइब्रेशन की जो रिजल्ट है वो मुझे फील हो रही है और मैं महसूस करती हूँ मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ। और जब मैंने खुद महसूस किया मैं उसको रेडिएट करना आरंभ कर देती हूँ, और जब मैंने रेडिएट करना आरंभ किया तो ईगो क्लैशेस तो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मैंने रेडिएट करना बंद कर दिया था ना, बिकॉज आई एम सो एंड सो। तो अभी आई एम सो एंड सो नहीं, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ ब्लिसफुल सोल, आई एम अ लवफुल सोल, I am a powerful soul, I am happy soul, I am knowledgeful soul, I am the one who thinks, who decides, who comes into action, I am the one who is a bundle of sanskars, kaha na every action uska sanskar banega, I am the bundle of sanskars, so redefine who am I, summary aaj ke lesson ki, who am I? I am the energy, the being, the consciousness, which is known as soul, atma, ruh, self. उसका form क्या है? तो का self spiritual energy in light form. तो वो light form की energy इस body में कहाँ बैठी है? If I say here, people can raise question कि how do I believe that soul is here? तो हमने पहले ही समझ के आए कि soul क्या करती है? सोचती है, डिसाइड करती है, एक्शन में आती है। तो जब आप सोचते हैं उस सोचने की सेंसेशन कहाँ होती है आपको? यहाँ होती है, यहाँ होती है, कहाँ होती है? तो सबसे बड़ा प्रूफ यही है कि आत्मा यहाँ पे निवास करती है, यहाँ बैठकर ये कार्य करती है, और ये आत्मा ओरिजिनली कहाँ से आई? यहाँ पर भी ओरिजिनली कहाँ से आई? हम कह सकते हैं प्रीवियस बॉडी से, वो लेफ्ट किया, उसको छोड़ा और इसमें आई, यहाँ बैठी। लेकिन इस जर्नी में कहीं तो फर्स्ट टाइम लिया होगा ना बॉडी, तो वहां कहाँ से आई? तो हम सभी कहते हैं इस शरीर के लिए कहते हैं मिट्टी से आया, मिट्टी में जाएगा। और आत्मा के लिए क्या कहते हैं? जहां से आए हैं वहां चले जाएंगे, या कहेंगे भगवान के घर से आए हैं, भगवान के घर चले जाएंगे, या कहेंगे ऊपर से आए हैं, ऊपर चले जाएंगे। तो सचमुच आत्मा ऊपर से आई है, ऊपर माना ये जो पांच तत्वों की दुनिया है जहाँ सूरज चांद सितारे हैं, इसके आगे आगे जाएंगे तो पांच तत्वों का जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा, उसके आगे एक दूसरी दुनिया शुरू होती है जो सिक्स एलिमेंट ब्रह्म तत्व की बनी है, जो ब्रह्म तत्व गोल्डन रेड लाइट का है, उसी को कहते हैं ब्रह्मलोक, उसी को कहते हैं परम धाम, वो ही आत्मा का अपना घर है। जहाँ आत्मा को कोई शरीर नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कोई पोजीशन नहीं, कुछ नहीं है, आत्मा इन सब अक्वायर से मुक्त है, और मुक्त है तो निश्चिंत है, विश्राम की स्थिति में है। तो हमें क्या करना है? बीच बीच में उस घर की विजिट करके उस मुक्त अवस्था को, निश्चिंत अवस्था को, उस विश्राम अवस्था को अनुभव करके फिर इस रंगमंच पर आना है। तो मैं एक्टर हूँ आत्मा, शरीर रूपी कॉस्ट्यूम पहनती हूँ, मेरे पास क्वालिटी से प्रेम प्यार खुशी की उसको एक्सप्रेस करने के लिए मैं रंगमंच पर आई हूँ। दैट इज माय मेन एम। रोल चाहे कुछ भी मिले, पर एक एक्टर की पूरी कोशिश क्या रहती है? रोल चाहे भिखारी का दो, चाहे रोल कुली का दो, चाहे रोल हीरो का दो, लेकिन मेरी जो टैलेंट है वो उसमें निखर कर आनी चाहिए। तब कहीं जाकर चाहे कुली का भी रोल प्ले करेंगे तो भी बोलेंगे वाह क्या रोल प्ले, और चाहे हीरो का भी प्ले करेंगे तो भी कहेंगे क्यों? क्योंकि उसमें अपनी खूबियों को बाहर लाया जा रहा है। तो हमारा पूरा कर्तव्य अभी, पूरी हमारी कोशिश ये रहे, व्हाटएवर एक्शन आई एम डूइंग इन दिस फील्ड ऑफ एक्शन, व्हेनेवर आई एम कनेक्टिंग टू पीपल, व्हेनेवर आई एम इंटरेक्टिंग विद पीपल, आई शुड बी इन दैट बीइंग स्टेज एंड रेडिएटिंग दैट प्योर लव एंड हैप्पीनेस, सो आई विल हेल्प देम ऑल्सो टू ट्रिगर आउट देयर और उधर भी बींग इधर भी बींग वो भी वही रेडिएट करेगा, रिलेशन बहुत अच्छे बन जाएंगे, जीवन बहुत सहज बन जाएगी। यही चाहिए जीवन में। तो चलिए थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। मेडिटेटिव पोज में बैठेंगे, अलर्ट रिलैक्स, अपना ध्यान सब तरफ से हटाकर मस्तक के बीचों बीच केंद्रित करें, जहां मैं आत्मा विराजमान हूं। आई द सेल्फ स्पिरिचुअल एनर्जी इन लाइट फॉर्म। तो स्वयं को अ टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट उस रूप में देखे, मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु हूँ, एक चैतन्य शक्ति अजर अमर अविनाशी, एक दिव्य सितारा। मैं आत्मा इस शरीर में बैठकर इस शरीर का संचालन करती हूँ। मैं ही वो शक्ति हूँ जो सोचती है, जो डिसाइड करती है और फिर कर्म में आती है, और इस तरह से संस्कारों का निर्माण करती है। मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार सहित हूँ। मुझ आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी सुख शांति प्रेम प्यार है, खुशी आनंद है। मैं प्यार स्वरूप आत्मा हूँ। देखे आत्मा एनर्जी वाइब्रेट होती है और वो प्यार के वाइब्रेशन मैं स्वयं ही अनुभव करती हूँ और चारों ओर फैलाती भी हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा अपने परम धाम घर से इस संसार रूपी रंगमंच पर आई ही इसलिए हूँ कि शरीर रूपी वस्त्र धारण करके रंगमंच पर अपना पार्ट प्ले करते हुए अपनी ओरिजिनल क्वालिटीज को व्यक्त करते हुए उनको अनुभव भी करूं और दूसरों को भी अनुभव कराऊं। पर इस लंबी यात्रा में मैंने सब कुछ भुला दिया, स्वयं का रूप भुलाया, स्वयं की क्वालिटीज को भुलाया,
और जो संसार में आकर हासिल किया उसको कहा ये मैं हूं। लेकिन आज मुझे समझ मिल गई, जिस चीज को मैं समझती रही वो तो मेरा है, मैं उससे अलग हूं। और इस रंगमंच पर आने से पहले मैं अपने घर में थी, तो चले अपने घर का भी अनुभव करें, देखें मैं आत्मा मस्तक सिंहासन से निकलकर ऊपर जा रही हूँ, देखें दिव्य सितारा चमकता हुआ ऊपर चलता जा रहा है, सूरज चांद सितारों को भी क्रॉस करके, नीले आसमान को क्रॉस करके एक ऐसी दुनिया में पहुंच गई हूँ जहाँ चारों तरफ सुनहरे लाल रंग का प्रकाश ही प्रकाश है। और ऐसी दुनिया में मैं आत्मा दिव्य सितारा चमक रही हूँ, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश, शांति ही शांति। हर प्रकार से मुक्त, निश्चिंत, विश्राम की स्थिति। डीप साइलेंस और इस विश्राम की स्थिति का अनुभव करके स्वयं को शांति से भर के पुनः मैं आत्मा चलती हूँ रंग मंच पर पाठ प्ले करने। देखे मैं आत्मा दिव्य सितारा चम 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 चमाती हुई नीचे उतरती हूँ, उतरते उतरते अपने इस शरीर में मस्तक सिंहासन पर विराजमान, कर्म क्षेत्र पर कर्म करने के लिए तैयार, एक नई स्मृति के साथ कि मैं एक्टर हूँ, प्रेम प्यार खुशी आनंद शक्ति मेरी क्वालिटीज है, और इस कर्म क्षेत्र में हर कर्म करते हुए मुझे इन क्वालिटीज को अभिव्यक्त कर एक बेस्ट एक्टर बनना है। ओम शांति शांति शांति।
ओम शांति। हम इंदिरा दीदी का करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। इन्होंने बहुत अच्छी तरह आज हमें अपना परिचय दिया, बराबर सब आत्मा है हा? तो आज यहाँ 3 दिन जितने भी आप रहो तो आपको क्या करना है, यही प्रैक्टिस करनी है।